नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्य की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की कृषि और बागवानी से जुड़ी समस्याओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बीएसएनएल पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पुरानी तकनीकी हटाकर नया नेटवर्क सिस्टम लगाएगा और विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में समग्र शिक्षा योजना के तहत एससीईआरटी में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर उत्तराखंड में कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के क्रियान्वयन में सहयोग का अनुरोध किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव रखे, जिनमें कृषि बाड़ निर्माण के लिए 1,052 करोड़ रुपए, फार्म मशीनरी बैंक के लिए 400 करोड़, स्टेट मिलेट मिशन के तहत लगभग 135 करोड़ और बीज उत्पादन के लिए 5 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सेब उत्पादन, विपणन और भंडारण, कीवी की खेती और वन्य जीवों से सुरक्षा, नवाचार व स्टार्टअप्स तथा ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भी योजनाएं प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, भूमि सर्वेक्षण, युवा प्रशिक्षण, एग्री टूरिज्म स्कूल और माइक्रोबायोलॉजी लैब जैसी योजनाओं पर भी चर्चा की। श्री धामी ने राज्य में कोल्ड स्टोरेज, नर्सरी ग्रेडिंग यूनिट और सुपर फूड से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों की समय सीमा बढ़ाने और नए प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति देने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में पिचकुल की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाइन ब्रेकडाउन की स्थिति में तुरंत विश्लेषण कर आपूर्ति बहाल की जाए और तय मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हो। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लागत न बढ़ने की सख्त हिदायत दी। साथ ही कहा कि जो भी मास्टर प्लान तैयार हो उन्हें लागू करने से पहले केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से समीक्षा जरूर कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद निर्माणाधीन बिजली संयंत्रों और सब स्टेशनों का दौरा करेंगे। बैठक में पिचकुल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने बताया कि संस्था की रेटिंग 2024-25 में ए से बढ़कर A++ हो गई है। इससे मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर में 0.5% की छूट मिलेगी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को रियायती बिजली दरों के रूप में मिलेगा। उन्होंने बताया कि एशियाई विकास बैंक की सहायता से चल रही 6 परियोजनाएं सेलाकुई, खटीमा, लोहाघाट, धौलाखेड़ा, आराघर और मंगलौर वर्ष 2026 तक पूरी हो जाएगी। इससे कम वोल्टेज और बार बार बिजली जाने की समस्याएं कम होंगी और उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों पंचायती चुनाव का माहौल है। इस बीच पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने आम लोगों से कहा कि पंचायत चुनाव के जरिए गांवों की सरकार बनाने का यह मौका है, इसलिए ईमानदार और कर्मठ जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था देश के जमीनी लोकतंत्र की मजबूत नींव है और गांवों के सशक्त विकास के लिए इसमें सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मंत्री ने बताया कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई को होंगे, जबकि परिणाम 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों के लिए 63,812 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक है। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पंचायतों के विकास और अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निदेशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। बीएसएनएल अब पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पुरानी तकनीकें हटाकर नया नेटवर्क सिस्टम लगाएगा। इससे लोगों को तेज इंटरनेट और बेहतर कॉल की सुविधा मिलेगी। यह नया सिस्टम डीडी हाट, जौल जीबी, निगाल पानी और धारचूला के फोन केंद्रों में लगाया जाएगा। इससे बैंकों के एटीएम और सेना से जुड़े कामों में भी मदद मिलेगी। बीएसएनएल नैनीताल के उप महाप्रबंधक श्रीराम गौड़ ने बताया कि नई तकनीकी से गांवों में संचार सुविधा पहले से बेहतर होगी।
ये जो सीपैन ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हम लोग पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ इलाके में लगाने जा रहे हैं, जैसे डीडी हाट, जौल जीबी, निगाल पानी और धारचूला, ये जगह में लगाने से क्या होगा कि पिथौरागढ़ एरिया चूँकि हमारे कुमाऊं मंडल का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, यहाँ पर हमारे भारत देश के अन्य अन्य जगहों से तीर्थयात्री लोग आते हैं, मानसरोवर, छोटा कैलाश जगहों पे तीर्थयात्री आते हैं, तो इंटरनेट की स्पीड इन जगहों पे, ये हमारे जो सीपैन के इक्विपमेंट लगेंगे इन जगह पे लगने से उनकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगी। उसका हमारे फ़ायदा जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं भारत देश के अन्य कोनों से, उसका फ़ायदा हमारे तीर्थयात्रियों को मिलेगा।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में समग्र शिक्षा योजना के तहत SCERT में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4,73,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। निर्माण कार्य उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत Type 3 के 3, Type 2 के 2 और Type 5 का एक आवास बनाया जाएगा। डॉ. रावत ने प्रादेशिक शिक्षा संकुल परिसर ननूरखेड़ा के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत 12,00,000 रुपए से अधिक है। मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड राधा रतूड़ी ने हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस विभाग और नगर निगम से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की सुनवाई की तिथियां स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय इन विभाग के अधिकारियों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि हरिद्वार के वे विभाग जिनकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लगी है और जिनकी सुनवाई निर्धारित है, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन माध्यम से हाइब्रिड मोड में अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि कोई अधिकारी ड्यूटी के कारण हाइब्रिड मोड में भी शामिल नहीं हो सकता तो आयोग को ईमेल के माध्यम से तिथि संशोधन का अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे मामलों में कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद नई सुनवाई तिथि निर्धारित की जाएगी। तिथि संशोधन या जानकारी के लिए संबंधित कोर्ट स्टाफ से भी संपर्क किया जा सकता है। यह व्यवस्था अधिकारियों की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्था में बाधा न आने के उद्देश्य से की गई है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषि पर्णा सभागार में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भूमि विवाद, सीमांकन, नगर निगम, MDDA, शिक्षा, पुलिस और विधिक सहायता से जुड़ी कुल 125 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और संबंधित को जानकारी देने के निर्देश दिए। महिला, बुजुर्ग और बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने को कहा गया। नगर निगम, तहसील, पुलिस और अन्य विभागों को लंबित प्रकरणों में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। ब्रिक्स संगठन के घोषणा पत्र पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स व अमेरिका के बीच टैरिफ वार में उलझा भारत शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है टैरिफ युद्ध फिर शुरू, 7 देशों पर 25-40% शुल्क, ब्रिक्स देशों को भी धमकी। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है केंद्र ने कृषि व बागवानी विकास के लिए 3,800 करोड़ की सहमति दी। दैनिक जागरण ने प्रदेश में खेती किसानी की बदलेगी तस्वीर, केंद्र से मिलेंगे 3,800 करोड़ रुपए शीर्षक से समाचार पत्र प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्य की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की कृषि और बागवानी से जुड़ी योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मॉनसून के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बीएसएनएल पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पुरानी तकनीकी हटाकर नया नेटवर्क सिस्टम लगाएगा। और विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में समग्र शिक्षा योजना के तहत SCERT में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।